ब्रह्मा कुमार भ्राता रमेश शाह जी कहते हैं कि एक दिन मम्मा हापुड़ के हंगामे के बारे में बाबा को सुना रही थी कि वहाँ के विरोधी लोगों ने क्या किया, कैसे किया आदि। बाबा शांत चित होकर सुन रहे थे, मम्मा एक रस होकर बता रही थी। मैंने पूछा, मम्मा जब आप हापुड़ की परिस्थिति देख रही थी तो क्या आपके मन में हलचल हुई थी? मम्मा ने कहा, मुझे कोई हलचल नहीं होती, एक बात का हमें पक्का निश्चय है कि 5000 वर्ष पहले जैसे स्थापना हुई थी अब भी वैसे ही हो रही है। अभी जो उतराव चढ़ाव विघ्न परिस्थिति आ रही है वे 5000 वर्ष पहले भी आई थी। ऐसी कई बातें आएंगी और जाएंगी, इसलिए इन बातों से हमारी अवस्था नहीं बिगड़ती है।
मैंने पूछा, मम्मा ये सब संदेशियां कहां जाती हैं? उस समय उनकी आत्मा शरीर में होती है या कहीं और? मम्मा ने फौरन कहा कि इस बात पर अब तक बाबा ने रोशनी नहीं डाली है। हमने कहा, आपका विचार क्या कहता है? मम्मा ने कहा, हम तो विद्यार्थी हैं, जितनी पढ़ाई शिक्षक ने पढ़ाई है उतना ही सोचते हैं। मैं जो भी अपनी मत सुनाऊंगी वह मनमत हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए ईश्वरीय मत क्या है वह मालूम नहीं।
एक बार कानपुर के अनन्य बहन भाइयों ने मम्मा को निमंत्रण देने के लिए बहुत ही मीठे प्यार भरे गीत टेप करके मुंबई भेजे। गीतों में दर्द था, सब सुनने वालों को उन गीतों ने घायल किया और सबकी आंखों से पानी बहने लगा। मम्मा की आंखों में भी पानी भर आया, परंतु इतनी प्यार भरी आवाज को सुनकर भी मम्मा ने कहा कि यह बूंद आंखों से बाहर नहीं आएगी। मम्मा ने कहा, यज्ञ की शुरुआत में बाबा ने समझाया कि बच्ची आज के बाद कभी रोना नहीं। उसी दिन से मैंने बाबा से वायदा किया है कि मेरी आंखों से एक भी बूंद आंसू नहीं गिरेगा। हमने एक बार गीता पाठशाला के बहुत से शास्त्र पढ़े लिखे मित्रों को मम्मा से मिलाने के लिए बुलाया। मेरे मन में प्रश्न था कि मम्मा ने तो शास्त्र नहीं पढ़े हैं, फिर कैसे उन्हें ज्ञान से संतुष्ट करेंगी? पहला प्रश्न, क्या आप इस गीता को झूठी गीता कहती हैं? मम्मा ने तुरंत ही कहा, पांडवों ने यह गीता सुनकर क्या प्राप्ति की? गीता समाज के लिए थी, परंतु समाज कलयुगी बन गया। पांडव हिमालय चले गए, यादव यादवास थली में खत्म हो गए, कौरव कुरुक्षेत्र में खत्म हो गए। ज्ञान इतना ऊंच होते हुए भी क्यों समाज में विकृति पैदा हुई? और यहाँ अब परमात्मा कहते हैं कि मैं सतयुग की स्थापना अर्थात विश्व परिवर्तन गीता ज्ञान सुनाकर करता हूँ। तो बोलो, जिस गीता से विश्व परिवर्तन हुआ उसको सच्चा माने या जिससे समाज में विकृति पैदा हुई उसको सच्चा माने? आप लोग पढ़े लिखे हैं, अंधश्रद्धा से परे जाकर सत्यता के बारे में निष्पक्ष होकर सोचिए। यह सुनकर एक ने दूसरे को कान में कहा, अरे इन्होंने प्राप्ति की बात को लेकर हम सबका मुंह बंद कर दिया।
कहते हैं ना कि माँ प्रथम गुरु होती है, उसी प्रकार मम्मा ने हमारे ईश्वरीय जीवन की गुरु माँ बनकर हमें बहुत कुछ सिखाया। एक बार चलते चलते हम सब आगे चले गए और मम्मा अकेली पीछे रह गई। हमने कहा, मम्मा बाबा इतने वृद्ध होते हुए भी सदा साथ में रहते थे और कई बार तो हमसे भी आगे निकल जाते थे, आप तो चलने में पीछे रह गई। तो मम्मा ने हंसते हंसते कहा, बच्चे बाबा की बात तो निराली है, वहाँ तो एक तन में दो आत्माएं हैं, एक सर्वशक्तिमान परमात्मा और दूसरी ब्रह्मा बाबा की खुद की आत्मा। तो जरूर दो इंजन वाली गाड़ी एक इंजन वाली गाड़ी से फास्ट जाएगी ना। ईश्वरीय ज्ञान की नई बातों को न मानने वाले भी मातेश्वरी जी के व्यक्तित्व की महिमा करते थे। मम्मा का चेहरा बहुत सेवा करता था, अथक संकल्पातीत पुरुषार्थ का चैतन्य रूप हमारी मातेश्वरी जी थी।
ब्रह्मा कुमार भ्राता ब्रजमोहन जी लिखते हैं कि
मातेश्वरी जी से मेरी पहली मुलाकात 1955 में हुई थी। उनके मुखमंडल से रूहानियत टपक रही थी, उनके नयनों से असीम स्नेह बरस रहा था। मम्मा का व्यक्तित्व अति प्रभावशाली और सहज ही आकर्षण करने वाला था। आहा, कितना तपत बुझाने वाला था उनका सानिध्य। उसी क्षण मैंने जान लिया कि भक्त जन माँ को शीतला कहकर क्यों पुकारते रहे हैं। माँ ने अपने पंख समान कोमल और कमल समान पवित्र हस्तों से मुझे प्यार की थपकी देते हुए मेरा मुख मीठा कराया था। जहाँ कहीं भी बाबा और मम्मा दोनों विराजमान होते तो मैं इस दुविधा में पड़ जाता कि दोनों में से किससे दृष्टि लूं और किसकी दृष्टि से वंचित रहूं। एक ओर ज्ञान सूर्य का तेजस और प्रकाश होता तो दूसरी ओर ज्ञान चंद्रमा की चांदनी और शीतलता होती। मैं दोनों को ही इकट्ठा प्राप्त करते रहना चाहता था। मम्मा दिव्य गुणों की संपूर्ण साक्षात देवी थी, उनके संकल्प चट्टान की तरह अडिग थे। मम्मा इतनी योग युक्त गंभीर और शांत रहती थी कि उनके आसपास के वातावरण में सन्नाटा छाया रहता था। ऐसा सभी को प्रत्यक्ष लगता था कि मानो वह कोई चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। मम्मा की चाल फरिश्तों जैसी थी, पता भी नहीं चलता था कि कब मम्मा पास से गुजर गई। पत्र में वह मुझे सदा लाडले ब्रजमोहन जी लिखती थी। उस अलौकिक माता का बच्चों से इतना असीम प्यार था कि मुझे तो ऐसे लगने लगा था कि जैसे कि मेरी लौकिक माँ भी मम्मा ही है। मम्मा प्रेम पूर्ण और नेम पूर्ण दोनों योग्यताओं का इकट्ठा प्रयोग करती थी। वह प्रेम के लिए नेम या नेम के लिए प्रेम को तिलांजलि नहीं देती थी। एक दिन प्रातः क्लास के बाद नक्की झील का चक्कर लगाकर लौटते हुए मैंने देखा कि मम्मा जमुना बहन के साथ पांडव भवन से निकलकर झील की ओर जा रही हैं। मम्मा को देखते ही मेरी तो खुशी का ठिकाना न रहा, मैं पलटकर उनके साथ पुनः घूमने चल पड़ा। चलते चलते मम्मा ने कहा, चलो आज अनादरा पॉइंट तक चलते हैं। मैं तो कहा, मम्मा अब तो आप जानती हो कि मैं ब्रजमोहन हूँ और मैं जानता हूँ कि आप मम्मा हैं, पर सतयुग में तो यह सब याद नहीं रहेगा। मम्मा रहस्यपूर्ण रीति से मुस्कुराती रही। मम्मा से वह मिलना बहलना इतना सुखद प्रतीत हो रहा था कि सारे रास्ते खुशी से बिल्कुल पता ही नहीं। नहीं लगा कि मैं दोबारा इतना चल लिया हूँ। जमुना बहन ने बताया कि मम्मा भी रोज इतनी दूर नहीं जाती हैं। अगले दिन मम्मा और बाबा ने मेरे साथ फोटो निकलवाए जो आज भी मेरे कमरे में लगे हुए हैं। पर तब मुझे स्वप्न में भी यह विचार नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद माँ हमसे विदाई लेने वाली है और इस कल्प की हमारी यह अंतिम मुलाकात थी। पर लगता है कि मम्मा को यह सब ज्ञात था और शायद इसीलिए उस दिन मुझ पर इतना प्यार लुटाई जा रही थी।
ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई कहते हैं कि
मैं भारतीय नौसेना में था।
एक बार कार में पीछे की सीट पर मम्मा, जमुना दादी और सामने वाली सीट पर मैं और रमेश भाई बैठे थे। चौपाटी पर एक विज्ञापन का बोर्ड लगा हुआ था, रोजर ड्रिंक्स का। एक बोतल थी जिसमें से पेय नीचे गिलास में गिरता था तो वो बोतल खाली हो जाती थी, फिर वो बोतल भर जाती थी। रमेश भाई और हमारे बीच में बातचीत हो रही थी कि हम भी ऐसा एक ज्ञान युक्त चित्र बनाएं। हमने पूछा, मम्मा वह चित्र आपको कैसा लगा? मम्मा ने तब हमें ऐसा उत्तर दिया कि वह हमारे संकल्प और सपने में भी नहीं था। मम्मा ने कहा, जिस समय मम्मा क्लास में होती है उस समय ही सामने दृष्टि डालती है, नहीं तो मम्मा के लिए इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है। इतना वैराग्य था मम्मा का इस पुरानी दुनिया और दुनियावी वस्तुओं से। मम्मा को देखकर ऐसा लगता था जैसे उनकी बुद्धि परम धाम में लटकी हुई हो तथा अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रही हो।
मुंबई में मुस्लिम नेताओं ने एक सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें हम लोगों को भी निमंत्रण मिला। मम्मा ने कहा, निर्वैर बच्चे को भाषण के लिए भेज दो। मैंने कहा, मैंने कभी भाषण किया ही नहीं तो मैं कैसे जा सकता हूँ? मम्मा ने कहा, उसको मेरे पास बुलाओ, मैं अभी उसको भाषण करना सिखा देती हूँ। सम्मेलन का विषय था विश्व शांति। 4 मिनट तक मम्मा ने मुझे विश्व शांति क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है, विश्व में शांति कब थी और विश्व शांति का स्थापनकर्ता कौन है, ये सब बातें बताई। 40 मिनट हमारा भाषण को लोग एकाग्र चित होकर सुन रहे थे। उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षक हमारा ही भाषण लगा था। उन्होंने कल्प वृक्ष सीढ़ी और सृष्टि चक्र के चित्रों की भी बहुत मांग की थी। इस प्रकार खुद वाग देवी सरस्वती माँ ने मुझे वाक कला सिखाई। मम्मा का व्यक्तित्व बड़ा तेजोमय और स्वाभाविक रूप में एक माँ की भासना देता था। एक दिन उन्होंने भोजन शुरू करने से पहले पहली गिट्टी मुझे खिलाकर बाद में स्वयं खाई। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे बहुत दिनों के बाद मेरी माँ मुझे फिर से मिली। हमारे मन में कुछ प्रश्न होते थे लेकिन पूछते नहीं थे। आश्चर्य की बात यह है कि मम्मा की वाणी में उन सब शंकाओं और प्रश्नों के स्वतः ही उत्तर मिलते थे। मैंने पूछा, मम्मा आपको कैसे मालूम कि हमारे मन में यही प्रश्न है जिनके उत्तर आपने दिए? मम्मा ने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो बाबा को याद करती हूँ। बाबा की तरफ से जो प्रेरणा आती है उसके अनुसार मैं सुनाती हूँ। उन्होंने कभी यह नहीं कहा, मुझे पता पड़ गया था। सदा माँ ने बाबा की तरफ ही इशारा किया, अपने को सदा उनकी विनम्र बच्ची के रूप में ही प्रत्यक्ष किया। मम्मा की गहराई के साथ समझाने की विधि बहुत सरल, सहज और रमणीक होती थी। सुनने वालों को धारणा भारी और कठिन नहीं लगती थी। लगता था कि वे विद्या की देवी सरस्वती हैं और उनकी विद्या से जीवन धारणा रूपी धन से संपन्न हो रहा है। जैसे कोई चिड़िया अनाज के दाने को टुकड़ा टुकड़ा करके अपने बच्चों के मुंह में डालती है, वैसे ही मम्मा भी बाबा के गुह्य ज्ञान को पहले अपने में धारण कर अनुभव कर उसको इतना सरल बनाकर सुनाती थी कि ईश्वरीय ज्ञान से अनजान व्यक्ति को भी ज्ञान सहज समझ में आ जाता था। उनकी धारणा बहुत ऊंच कोटि की थी। मम्मा बोलती बहुत कम थी, केवल क्लास में या किसी से व्यक्तिगत रूप में मिलते समय ही हम उनकी आवाज सुनते थे। परमात्मा की याद में लवलीन रहने की उनकी एक स्वाभाविक स्थिति होती थी। उनके हर शब्द में ज्ञान समाया रहता था, यूं कहें उनके रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ था। उनको देखते ही परमात्मा की याद में हमारा मन मगन हो जाता था। याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। मम्मा में संगठन करने की शक्ति बहुत श्रेष्ठ और जबरदस्त थी। सबको साथ लेकर चलने की कुशल कला थी, बाबा ने कहा और मम्मा ने धारण किया। इसमें मम्मा नंबर 1 थी। कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि इनकी उम्र क्या है, मेरी उम्र क्या है। कोई किसी भी धर्म जाति पंथ वाला हो, हर एक ने यही अनुभव किया कि यह मेरी माँ है, मेरी हित चिंतक है। उस महान आत्मा में इतनी शक्ति थी, इसलिए ड्रामा कहिए या बाबा कहिए, उनको ही यज्ञ माता मातेश्वरी बनाया गया। मम्मा ने शुरू से अंत तक अपनी साधना में किसी भी प्रकार की ढील नहीं होने दी। रोज अमृत वेले 2 से 5 बजे तक यानी 3 घंटे बाबा को शक्तिशाली रूप में याद करने का अभ्यास करती थी। मुझे उनकी डायरी पढ़ने का सुअवसर मिला था। उन ज्ञान बिंदुओं को पढ़कर मुझे लगा कि मम्मा ने ज्ञान का कितना विचार सागर मंथन किया होगा, कितना ज्ञान की गहराई में गई होंगी और कितना उनको धारणा करने का अभ्यास किया होगा। विद्या देवी सरस्वती का वर्णन तो कवि विद्वानों ने किया है, लेकिन उस विद्या देवी के रूप और कर्तव्य को हमने अपनी आंखों से देखा है। उस माँ के बच्चे बने, यह हमारा परम सौभाग्य है।
मम्मा संपूर्ण पवित्रता की जीती जागती मिसाल थी। मम्मा के नयन व सूरत इतनी रूहानी होती थी कि जो भी उनको एक बार देखता वह जीवन भर नहीं भूलता था। मम्मा के सामने चाहे बाहर का व्यक्ति हो या यज्ञवत्स हो, कोई भी कभी झूठ नहीं बोल सकता था। उनके प्रचंड तेज के आगे किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। मम्मा की खुशी और नशा कभी कम नहीं होता था।
मम्मा न केवल मीठी वाणी बोलती थी बल्कि उनके नयनों की भाषा भी इतनी ही मधुर थी जो कोई भी नजर मिलाए उसे सहज आभास होता था कि मम्मा हमें कितना प्यार करती है।
मम्मा में परखने की शक्ति बहुत थी। वे दूर से ही कौन व्यक्ति कैसा है पहचान लेती थी।